अध्याय 8 कुमारगुप्त प्रथम। शासनकाल कुमारगुप्त प्रथम की सर्वप्रथम तिथि बिलशत अभिलेख से प्राप्त होती है। यह है 96 गुप्त संवत अर्थात 415 ईस्वी। संभव है कि कुमारगुप्त स्थिति के 2-3 वर्ष पूर्व ही सिंहासनासीन हो गया हो, क्योंकि उसके पिता चंद्रगुप्त की अंतिम तिथि सांची अभिलेख में 93 गुप्त संवत अथवा 412 ईस्वी है। उसके शासन की अंतिम तिथि 136 गुप्त संवत अथवा 455 ईस्वी उसकी चांदी की मुद्राओं से प्राप्त होती है। इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम ने लगभग 40 वर्ष तक राज्य किया। गुप्त अभिलेखों में कुमारगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र बताया गया है, परंतु वैशाली राजमुद्रा से उसके एक अन्य पुत्र गोविंदगुप्त का भी पता चलता है। वैशाली राजमुद्रा के अतिरिक्त गोविंदगुप्त का उल्लेख 524 मालव सम्मत अर्थात 466 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में भी हुआ है। यह अभिलेख सूचित करता है कि गोविंदगुप्त ने सामंत नरेशों की कृति का अपहरण कर लिया था और उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि वसुधाधीप अर्थात इंद्र गोविंदगुप्त की शक्ति को देखकर शंकाकुल हो गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि गुप्त इतिहास में गोविंदगुप्त की स्थिति क्या थी। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने यह मत प्रतिपादित किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्रों कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त में संभवतः सिंहासन के लिए युद्ध हुआ था। डॉक्टर राय चौधरी भी गोविंदगुप्त को कुमारगुप्त का विरोधी भाई मानते हैं। श्री जगन्नाथ ने भी इसी मत का समर्थन किया है और कहा है कि वैशाली की राजमुद्रा पर गोविंदगुप्त की माता के रूप में ध्रुव स्वामिनी का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि गोविंदगुप्त ही चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा पुत्र और युवराज था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वही सिंहासनासीन हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम तिथि 412 ईस्वी है और कुमारगुप्त प्रथम की प्रथम तिथि 415 ईस्वी। यह 3 वर्षों का अंतराल भी यही सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के तत्काल पश्चात कुमारगुप्त राजा न बना था। वास्तव में इन 3 वर्षों में गोविंदगुप्त ने राज्य किया था। 415 ईस्वी में गोविंदगुप्त की मृत्यु अथवा पराजय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम ने सिंहासन प्राप्त किया, परंतु यह मत काल्पनिक है। गोविंदगुप्त और कुमारगुप्त दोनों को ही भिन्न भिन्न अभिलेखों में ध्रुव देवी का पुत्र कहा गया है, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गोविंदगुप्त बड़ा भाई था अथवा चंद्रगुप्त का युवराज था। वैशाली राजमुद्रा के आधार पर अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि गोविंदगुप्त वैशाली में चंद्रगुप्त द्वितीय का गवर्नर था। यह आवश्यक अथवा संभव नहीं कि किसी राजा के राजकाल के प्रारंभिक और अंतिम दोनों वर्षों के अभिलेख मिल जाएं। 412 और 415 ईस्वी के बीच में न चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था और न कुमारगुप्त का, यह नहीं कहा जा सकता। यह 3 वर्षों का काल गोविंदगुप्त का शासन काल था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। गोविंदगुप्त की न कोई मुद्रा मिली है और न सम्राट के रूप में कोई अभिलेख। गुप्त वंशावली में भी इसका नाम नहीं आता, अतः उसे एक स्वतंत्र गुप्त सम्राट नहीं माना जा सकता। रही मंदोसर अभिलेख की बात, तो उससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि गोविंदगुप्त एक स्वतंत्र सम्राट था। उसके अधीन अनेक सामंत थे, यह कथन उसके सम्राट पद को सिद्ध नहीं करता। जैसा कि डॉक्टर दिनेश चंद सरकार ने कहा है, गवर्नर के अधीन भी अनेक छोटे छोटे सामंत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गुप्त नरेश वसु बुद्धगुप्त का सामंत सुरश्मि चंद्र था और सुरश्मि चंद्र का अधीन सामंत मातृ विष्णु था। कुछ विद्वानों ने वसुधाधीप का समीकरण कुमारगुप्त प्रथम के साथ किया है, जो गोविंद की शक्ति से शंकाकुल था। इस समीकरण का आधार यह भी है कि कुमारगुप्त प्रथम ने अपनी मुद्राओं पर भी श्री महेंद्र की उपाधि उत्कीर्ण कराई थी और महेंद्र तथा इंद्र समानार्थक हैं। यह समीकरण भी एकमात्र कल्पना पर निर्भर है। गोविंद की शक्ति से इंद्र भी शंकाकुल हो गया था। इस प्रकार के कथन का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए, यह केवल काव्यात्मक वर्णन है। 435 ईस्वी के तुमाई अभिलेख के आधार पर भी श्री जगन्नाथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुमारगुप्त ने शस्त्र बल से गोविंदगुप्त के हाथ से सिंहासन छीना था। उनके अनुसार तुमाई अभिलेख का कथन है कि कुमारगुप्त बलात् अधिकार में ही किए गए भार्या की भांति पृथ्वी की रक्षा कर रहा था, परंतु उपग्रह का सामान्य अर्थ होता है बलात्कार के करके नहीं। इस परिस्थिति में तुमाई अभिलेख से कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त के बीच गृह युद्ध सिद्ध नहीं होता। कुछ समय पश्चात स्वयं भंडारकर ने इस मत का परित्याग कर दिया और यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि गोविंदगुप्त और कुमारगुप्त एक ही व्यक्ति के दो नाम थे, परंतु इस मत का कोई भी प्रमाण नहीं है। उपयुक्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि गोविंदगुप्त एक गवर्नर था। वैशाली राजमुद्रा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहले वह अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीनता मथुरा में वैशाली का गवर्नर था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात जब कुमारगुप्त प्रथम सिंहासनासीन हुआ तो गोविंदगुप्त मालवा का गवर्नर बनाया गया। 493 मालवा संवत का एक अन्य अभिलेख भी मंदसौर में मिला है। इससे विदित होता है कि कुमारगुप्त पृथ्वी पर राज कर रहा था और बंधु वर्मन उसके अधीन मालवा में सामंत शासक था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि मालवा में गोविंदगुप्त नियुक्ति 435 ईस्वी के पश्चात की गई होगी। डॉक्टर दिनेश चंद सरकार और डॉक्टर रमेश चंद मजुमदार आदि विद्वान गोविंदगुप्त को मालवा का गवर्नर ही मानते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि मंदसौर के उपयुक्त दोनों अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग नहीं किया गया है, ये मालवा संवत में है। परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मालवा गुप्त साम्राज्य के बाहर था। मालवा संवत का प्रयोग स्थानीय परंपरा की रक्षा के लिए किया गया होगा। गोविंदगुप्त वाले मंदसौर अभिलेख में गुप्त सम्राट का भी नामोल्लेख नहीं है। यह विशेष परिस्थिति का परिणाम था। गोविंदगुप्त सम्राट का एक अनुभवी पुत्र था। गुप्त साम्राज्य में उसकी विशेष प्रतिष्ठा थी, अतः अभिलेखक ने यह आवश्यक नहीं समझा कि उसकी पराधीनता प्रदर्शित करने के लिए सम्राट का नाम भी उत्कीर्ण करे। अभिलेख और मुद्राएं कुमारगुप्त प्रथम के कम 13 अभिलेख मिले हैं। ये उसके साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में पाए गए हैं, इसलिए इनसे उसके साम्राज्य की सीमाएं निश्चित करने में सहायता मिलती है। कुछ से उसके शासनकाल की तिथियों और कुछ से उसके सामंतों के नामों का ज्ञान होता है, परंतु इन अभिलेखों में उसकी किसी विजय, उसके किसी युद्ध अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख नहीं मिलता। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अंतिम कुछ वर्षों को छोड़कर कुमारगुप्त का शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। परंतु डॉक्टर राखल दास बनर्जी के इस कथन का कोई साक्ष्य नहीं है कि कुमारगुप्त एक निर्बल शासक था। उसका शासनकाल समृद्धिपूर्ण भी था। यही कारण है कि उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं चलाई। बयाना मुद्रा भांड में केवल कुमारगुप्त की ही 623 मुद्राएं मिली हैं। इनमें से कुछ मुद्राएं बिल्कुल नई शैली की हैं। इनमें विशेष महत्वपूर्ण है मयूर शैली की मुद्रा। यह कदाचित समस्त गुप्त मुद्राओं में सर्वाधिक सुंदर है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में उसने मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं भी चलाई। अश्वमेघ एक स्वर्ण मुद्रा मिली है जिसके अग्रभाग पर अश्व यूप है, पृष्ठ भाग पर चरम धारिणी राजमहिषी है। इसी ओर अश्वमेघ महेंद्र लिखा हुआ है। महेंद्र कुमार गुप्त की उपाधि थी। इसी से डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी आदि विद्वानों ने इस मुद्रा को कुमारगुप्त की मुद्रा माना है। इस अश्वमेघ के पूर्व कुमारगुप्त ने कोई नई विजय की थी या निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। नाम और उपाधियां। कुमारगुप्त अनेक नामों से विख्यात था, यथा श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, श्री महेंद्र सिंह, सी सिंह महेंद्र, महेंद्र कुमार, महेंद्र कर्मा, गुप्त कुमार मलचंद्र, गुप्त कुलपी ओम शली आदि। वेनसांग का शुक्रादित्य यही कुमारगुप्त था, क्योंकि शक्र और महेंद्र पर्यायवाची शब्द है जिसका अर्थ है इंद्र। वामन के काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में चंद्रगुप्त के एक पुत्र चंद्र प्रकाश का उल्लेख है। चंद्र प्रकाश ने बौद्ध विद्वान वसुमित्र को अपना मंत्री नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त और चंद्र प्रकाश के समीकरण पर विवाद है। एलन महोदय के मतानुसार चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय था, अतः उसका पुत्र प्रकाश कुमारगुप्त होगा। कुमारगुप्त के लिए मुद्राओं पर गुप्त कुमार कुलाम मलचंद्र और गुप्त कुल व्योम शशि उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जो चंद्र के अर्थ में है। अतः संभव है कि कुमारगुप्त का एक अन्य नाम चंद्र प्रकाश भी रहा हो, परंतु डॉक्टर मजूमदार चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम मानते हैं। इस प्रकार उसका पुत्र चंद्र प्रकाश समुद्रगुप्त हुआ। पदाधिकारी अभिलेखों से कुमारगुप्त के अनेक पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं। घटोत्कच गुप्त एरण प्रदेश का गवर्नर था। दसपुर में बंधु वर्मन गवर्नर था। पुंडवर्धन चिरात दत्त नामक दूसरे गवर्नर के अधीन था। करमडांडे अभिलेख से प्रकट होता है कि अवध में पृथ्वीक्षीर्ण गवर्नर था। साम्राज्य विस्तार कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख का उल्लेख है कि कुमारगुप्त का शासन संपूर्ण पृथ्वी पर था, जो चारों समुद्रों से घिरी हुई थी। विभिन्न साक्ष्यों से कुमारगुप्त के साम्राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सिद्ध किए जा सकते हैं। बंगाल निश्चित रूप से उसके अधीन था। निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। पहला, दामोदरपुर का प्रथम ताम्रपत्र, इसकी तिथि 124 गुप्त संवत है। इसमें कुमारगुप्त के गवर्नर चिरात दत्त का नाम मिलता है। दूसरा, दामोदरपुर का द्वितीय ताम्रपत्र, इसकी तिथि 128 गुप्त संवत है। इसमें भी कुमारगुप्त के गवर्नर चिरात दत्त का नाम है। तीसरा, धनेदह ताम्रपत्र, इसकी तिथि 113 गुप्त संवत है। इसमें भी कुमारगुप्त का नाम है। चौथा, बेग्राम का ताम्रपत्र, इसकी तिथि 128 गुप्त संवत है। इसमें कुमारगुप्त का नाम नहीं है, परंतु तिथि से स्पष्ट हो जाता है कि यह उसी के शासनकाल में उत्कीर्ण कराया गया। इन सभी में भूदान का उल्लेख है। पश्चिमी भारत के विभिन्न प्रदेशों में उसके अभिलेख और सिक्के मिले हैं। तुमाई अभिलेख से प्रकट होता है कि पूर्वी मालवा में उसका गवर्नर घटोत्कच गुप्त राज्य करता था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार पश्चिमी मालवा में उसका गवर्नर बंधु वर्मन था। उसकी मुद्रा सतारा, अहमदाबाद, जूनागढ़ और बलभी से में मिली है। इनमें से भी उसका अधिकार पश्चिमी भारत में सिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश गढ़वाल मनकुवर अभिलेख तथा करमडांडे अभिलेख से इस बात के प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश उसके अधीन था। एलन महोदय का अनुमान था कि कुमारगुप्त की मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं गंगा घाटी पर उसका आधिपत्य सूचित करती हैं। मध्य प्रदेश यहाँ उसने सर्वप्रथम अपनी चांदी की मुद्राएं चलाई। इन पर उसके गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई। कामरूप गैंडा सिल्ली के स्वर्ण मुद्राओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि कामरूप में ही कुमारगुप्त का शासन था, क्योंकि गैंडा विशेष तथा कामरूप में पाया जाता है, परंतु यह मत नितांत काल्पनिक है। दक्षिणा पर डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर रमेश चंद मजुमदार का मत है कि नर्मदा नदी के दक्षिण का कुछ भाग भी कुमारगुप्त के अधीन था। इसका विशेष आधार कुमारगुप्त की व्याघ्र शैली की मुद्राएं हैं। व्याघ्र नर्मदा नदी के दक्षिण के वनों में मिलता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतारा है जहाँ उसकी मुद्राएं मिली हैं, परंतु यह मत संदेहपूर्ण है क्योंकि मुद्राएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती हैं। शक्तिशाली नरेश इस प्रकार बहुत संख्यक अभिलेखों मुद्राओं और विशाल साम्राज्य से प्रकट होता है कि कुमारगुप्त एक शक्तिशाली राजा था और उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य की पूर्ण रूप से रक्षा की। गुप्त संवत 129 के मनकुवर अभिलेख में कुमारगुप्त के लिए महाराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर डॉक्टर फील्ड का मत था कि कुमारगुप्त इस अभिलेख के समय केवल एक सामंत रह गया था, परंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कभी कभी स्वतंत्र राजाओं ने भी छोटी उपाधियां धारण की थी। पुनः 128 से 129 के दामोदरपुर ताम्रपत्र में कुमारगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया है। इसी प्रकार डॉक्टर राखलदास बनर्जी का यह मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुमारगुप्त एक निर्बल राजा था। धार्मिक सहिष्णुता कुमारगुप्त वैष्णव धर्मावलंबी था। मुद्राओं और अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। उसकी अपनी कुछ मुद्राओं पर विष्णु वाहन गरुड़ की मूर्ति है, परंतु वह दूसरे धर्मों के प्रति भी नितांत सहिष्णु है। सभी धर्मावलंबी उसके साम्राज्य में सुख शांति पूर्वक रहते थे। पहला करम डांडे अभिलेख से प्रकट होता है कि उसका मंत्री पृथ्वी शेण शैव था और उसने शिवलिंग की स्थापना कराई थी। दूसरा मंदसौर अभिलेख के अनुसार पश्चिमी मालवा में उसका गवर्नर बंधु वर्मा राज्य करता था। इसी गवर्नर के शासन काल में एक तंतुवाय श्रेणी ने दसपुर में एक सूर्य मंदिर बनवाया था। तीसरा वेनसांग के अनुसार स्वयं कुमारगुप्त ने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना कराई थी। चौथा मनकुवर अभिलेख के अनुसार बुद्ध मित्र नामक एक व्यक्ति ने एक बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की थी। पांचवा बिलचद अभिलेख ध्रुव शर्मा द्वारा स्वामी महासेन के मंदिर के निर्माण की सूचना देता है। छठवा उदयगिरी गुहालेख का कथन है कि शंका नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थकर पाशनाथ की एक मूर्ति स्थापित कराई थी। दक्षिण में अभियान अनेक साक्ष्यों से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुमारगुप्त के शासन के अंतिम काल में गुप्त साम्राज्य की स्थिति बड़ी संकटपूर्ण और अशांतिमय हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारगुप्त ने नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना राज्य विस्तार करने की चेष्टा की थी और प्रारंभ में उसे कुछ सफलता भी मिली। उसकी कुछ चांदी की मुद्राएं त्रैकुटक नरेशों की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। इस आधार पर एलन महोदय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि कुमारगुप्त ने त्रैकुटकों को पराजित करके उनसे दक्षिणी गुजरात छीन लिया था। सतारा जिले में समंद नामक स्थान पर कुमारगुप्त की 1395 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। इसी प्रकार बरार में एलिशपुर में उसकी 13 मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं में कुमारगुप्त के दक्षिणी अभियान का अनुमान लगाया जा सकता है। डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार उसकी व्याघ्र शैली की मुद्राएं भी संभवतः नर्मदा नदी के दक्षिण में उसके राज्य विस्तार की सूचना देती हैं। पुष्यमित्र परंतु कुछ समय पश्चात कुमारगुप्त को पुष्यमित्र नामक एक जाति के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस युद्ध की सूचना हमें भीतरी तंबलेख से प्राप्त होती है। इससे प्रकट होता है कि गुप्त वंश की राजलक्ष्मी विचलित हो गई थी, जिसे कंदगुप्त ने पुनः स्थिर किया। इस कार्य में उसे एक रात पृथ्वी पर सोकर बितानी पड़ी। उसने पुष्यमित्रों को जीता जो बल और क्रोध से परिपूर्ण होते हुए भी कोष से भी समृद्ध थे और उनके राजा रूपी पादपीठ पर अपना बायां पैर रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्रों का यह आक्रमण कुमारगुप्त के शासन काल के अंतिम चरण में हुआ था, जबकि वह वृद्ध हो गया था। कुमारगुप्त ने युद्ध का भार राजकुमार स्कंदगुप्त के ऊपर डाला। युद्ध बड़ा संकटपूर्ण था, उसका अनुमान इसी बात से लगाया
लगाया जा सकता है कि राजकुमार स्कंदगुप्त को एक रात पृथ्वी पर सोकर व्यतीत करनी पड़ी, परंतु अंत में उसकी विजय हुई। परंतु उसकी विजय के पूर्व ही उसके पिता कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। ये पुष्यमित्र कौन थे, इस बात पर बड़ा मतभेद है। पहला, दिवेकर महोदय ने पुष्यमित्र के स्थान पर युद्धमित्र पढ़ा है और कहा है कि यहां किसी जाति विशेष का नहीं वरन शत्रुओं का उल्लेख हुआ है। डॉक्टर वाशम और डॉक्टर छाबड़ा भी इसी मत को ग्रहण करते हैं। दूसरा, हरनली महोदय पुष्यमित्रों को मैत्रिक मानते हैं। तीसरा, डॉक्टर राखल दास बनर्जी पुष्यमित्रों को हूण मानते हैं। चौथा, एनके भट्टशाली महोदय ने उन्हें कामरूप नरेश पुष्य वर्मन के वंशज मानते हैं। पांचवा, जायसवाल महोदय के अनुसार वे पश्चिमी मालवा में रहते थे, उनका राज्य गणतंत्रवादी था। छठवां, डॉक्टर स्मिथ उन्हें पश्चिमोत्तर प्रदेश की जाति मानते हैं। वायु पुराण से विदित होता है कि पुष्यमित्र जाति नर्मदा नदी के तट पर मैकल प्रदेश में रहती थी। बालाघाट तारुण पत्र के अनुसार वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के अधिकार में मैकल प्रदेश भी था। संभव है कि पुष्यमित्रों ने वाकाटकों को सहायता से ही गुप्त साम्राज्य से लोहा लिया हो की सहायता से ही गुप्त साम्राज्य से लोहा लिया हो बाण के हर्षचरित का कथन है कि मैकल नरेश के मंत्री मगध के किसी राजा को बंदी बनाकर ले गए थे, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह मगध नरेश कुमारगुप्त था। 129 गुप्त संवत के मनकुवर अभिलेख में कुमारगुप्त की उपाधि केवल महाराष्ट्र है। इस आधार पर फिल्ट महोदय मानते हैं कि कुमारगुप्त अपने शत्रुओं के अधीन हो गया था, परंतु यह मत भी नितांत असंगत है क्योंकि 128 से 129 गुप्त संवत के दामोदरपुर नामपत्र में कुमारगुप्त के लिए महाराजा अधिराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। अंतोगत्वा राजकुमार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया, परंतु उसकी इस विजय के पूर्व ही कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। क्या कुमारगुप्त ने सिंहासन त्याग किया था? कथा सर इस सागर का कथन है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने मलेच्छों को पराजित किया था, तत्पश्चात महेंद्रादित्य ने विक्रमादित्य को राज्यभार सौंपकर संन्यास ले लिया। इसी प्रकार चंद्रगर्भ परीक्षा का कथन है कि महेंद्र सेन ने अपने पुत्र दुप्रस्थ हस्त के हाथों में राज्य सौंपकर संन्यास ले लिया था। कुमारगुप्त की अप्रतिघ शैली की एक मुद्रा मिली है जिसके अग्रभाग पर बीच में कुमारगुप्त की मूर्ति है। वह एक धोती धारण किए हुए है, उसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। उसके दाहिने ओर एक नारी और बाईं ओर एक पुरुष वितर्क मुद्रा में दिखाए गए हैं। डॉक्टर अल्टेकर का मत है कि इस दृश्य में कुमारगुप्त सिंहासन त्याग करते हुए दिखाया गया है और उसकी रानी तथा उसका पुत्र उसे ऐसा न करने के लिए मना कर रहे हैं। परंतु डॉक्टर अल्टेकर के इस मत को विद्वान स्वीकार नहीं करते।